नमस्कार भारत, तारीख 23 नवंबर दिन सोमवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। बेल्जियम में पुलिस ने 22 जगह छापे डाले, 16 लोगों को गिरफ्तार किया। ब्रसेल्स में आज भी जारी रहेगा हाई अलर्ट, रेस्तरा, विश्वविद्यालय और मेट्रो बंद।
शाम को रेस्टोरेंट वगैरह और बड़ी बड़ी दुकानें भी बंद कर दिया है, तो लोगों में एक तरह से खौफ और डर भी है और बहुत से लोग जो है वो घर में बैठे रहते हैं, निकलते भी नहीं।
बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए अब विदेशियों को पहननी पड़ेगी धोती साड़ी।
विदेशी है चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, घुटनों को ऊपर करेकर कपड़ों में आते थे, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है कि वो अगर अर्ध कपड़ों में आ रहे हैं तो धोती या कुछ लपेट में ढका रहे हैं।
3 महीने बाद फिर से खुले नेपाल के स्कूल। खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, समीर आत्मज मिश्र से। बेल्जियम के संघीय प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि ब्रसेल्स इलाके में चलाए गए पुलिस के व्यापक खोज अभियान के बाद 16 लोगों को ब्रसेल्स और शार्लेरोई शहरों से गिरफ्तार किया गया है। कुल 22 जगहों पर छापे मारे गए हैं। इस दौरान 19 घरों की तलाशी ली गई। हालांकि किसी तरह के हथियार या विस्फोटक बरामद नहीं हुए हैं, लेकिन गिरफ्तार लोगों में पेरिस हमले के मुख्य संदिग्ध सलाह अब्दुस्सलाम शामिल नहीं हैं। इस बीच बेल्जियम के प्रधानमंत्री का कहना है कि ब्रसेल्स में हाई अलर्ट सोमवार को भी जारी रहेगा और स्कूल कॉलेज सोमवार को भी बंद रहेंगे। इराक के शहर मोसुल में कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने सोशल मीडिया पर इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अभियान चलाने के आरोप में 12 छात्रों की हत्या कर दी है। एक सुरक्षा स्रोत का कहना है कि इन छात्रों के शव मोसुल में मुर्दा घर को सौंप दिए गए हैं। मोसुल शहर में इस्लामिक स्टेट का काफ़ी प्रभाव है। पिछले साल जब से इस्लामिक स्टेट ने शहर पर कब्जा किया है, तब से ये लोग इस्लामिक कानून को अपने ढंग से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा यहां से गैर मुसलमानों को भगाने का अभियान भी चलाया जा रहा है। हांगकांग में कल हुए जिला परिषदों के चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा मतदान हुआ है। पिछले साल हुए लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों के बाद इन चुनावों को जन भावनाओं का पहला वास्तविक इम्तिहान माना जा रहा है। 53 वर्षीय एक व्यक्ति चान लाई इंग कहते हैं कि उन्हें बदलाव की उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि बदलाव आएगा। सबसे पहले बोलने की आज़ादी मिलेगी, उसके बाद शिक्षा का विकास होगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चों की सोच, उनके विकास, उनके फैसलों को सम्मान मिल सकेगा। हांगकांग के एक आम नागरिक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। नेपाल में नए संविधान के निर्माण के बाद से चल रहे विरोध प्रदर्शनों में पिछले 2 दिन में कम से कम 4 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। ये सभी पुलिस के साथ हुई झड़पों में मारे गए हैं। इसके अलावा दर्जनों प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। मधेशी समुदाय के प्रदर्शनकारियों का कहना है कि संविधान में उनके समुदाय के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है और इसी के विरोध में इन लोगों ने पिछले 2 महीने से भारत से लगी सीमा को जाम कर रखा है। उत्तरी म्यांमार की एक जेड खान में भूस्खलन के बाद वहां से कम अब तक 100 शव निकाले जा चुके हैं। दर्जनों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। शनिवार को कचिन राज्य में एक खान धस गई थी, जिसके बाद से ही कई लोग लापता हैं। म्यांमार के कचिन प्रांत में दुनिया का सबसे बेहतरीन जेड पत्थर निकलता है यहाँ, लेकिन यहाँ भूस्खलन भी सामान्य बात है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय खबर से। जैसा कि अभी अभी आपने समाचारों में समीर आत्मज मिश्र से सुना, बेल्जियम में चरमपंथी हमलों की आशंका के चलते हाई अलर्ट जारी है। राजधानी ब्रसेल्स में स्कूल कॉलेजों के अलावा मेट्रो सेवाएं आज भी बंद रहेंगी। कल देर रात राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में हाई अलर्ट जारी रखने का फैसला किया गया। इस बीच पेरिस हमलों के संदिग्ध चरमपंथी सालेह अब्दुस्सलाम को पकड़ने के लिए ब्रसेल्स की सड़कों पर सैनिकों की भारी तैनाती है। बेल्जियम के संघीय प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि पुलिस के व्यापक खोज अभियान के बाद 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान 19 घरों की तलाशी ली गई, लेकिन किसी तरह के हथियार या फिर विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए समीर आत्मज मिश्र से।
बेल्जियम के प्रधानमंत्री का कहना है कि पेरिस हमलों में शामिल संदिग्ध लोगों की तलाश जब तक पूरी नहीं होती तब तक ब्रसेल्स में हाई अलर्ट जारी रहेगा। ये फैसला सरकार की ओर से सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद किया गया है। प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने कहा कि ब्रसेल्स में सोमवार को भी स्कूल, विश्वविद्यालय और मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। हम लोग मुख्य रूप से सार्वजनिक परिवहन पर ध्यान दे रहे हैं और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेट्रो सेवाओं को सोमवार तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। सोमवार तक स्कूल भी बंद रहेंगे। वैसे हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द सामान्य जनजीवन की बहाली सुनिश्चित करें। ये थे बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल के शब्द। रविवार को साप्ताहिक अवकाश के दौरान ब्रसेल्स शहर पूरी तरह से बंद रहा और पुलिस पेरिस हमले में शामिल कथित हमलावर की खोज में जुटी रही। गृह मंत्री जान जाम्बेन के मुताबिक मौजूदा खतरा पेरिस हमलों में वांछित संदिग्ध चरमपंथी सालेह अब्दुस्सलाम से भी बड़ा खतरा है। सालेह अब्दुस्सलाम को पकड़ने के लिए ब्रसेल्स की सड़कों पर सैनिकों की भारी तैनाती की गई है। बेल्जियम में विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार के फैसले का समर्थन किया है। ब्रसेल्स क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विपक्षी पार्टी के एक सांसद जॉर्ज डेल मैग्ने का कहना था, हम लोग की आशंका अभी भी बनी हुई है, इसलिए मेरा मानना है कि ये ठीक फैसला है। हम किसी तरह का जोखिम नहीं उठा सकते, खासकर बच्चों के मामले में, इसीलिए स्कूलों को बंद करने का फैसला सही है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैंने अपने शहर को इस तरह से खौफ के साए में कभी नहीं देखा है। ये थे ब्रसेल्स के सांसद जॉर्ज डेल मैग्ने के शब्द। वहीं पेरिस हमलों के मुख्य संदिग्ध सलाह अब्दुस्सलाम के भाई ने उससे पुलिस के सामने समर्पण करने की अपील की है। मोहम्मद अब्दुस्सलाम का कहना है कि पिछले 6 महीने से उसके भाई के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ रहा था। उसमें कुछ बदलाव दिख रहा था, लेकिन ये ऐसा नहीं था कि हम लोग या परिवार के लोग इससे परेशान होते। लगता है कि उसने आखिरी क्षणों में फैसला किया कि वो पेरिस हमलों में शामिल नहीं होगा और उसने सोचा होगा कि वो खुद को अधिकारियों के हवाले कर देगा। मोहम्मद अब्दुस्सलाम के शब्द। सलाह अब्दुस्सलाम को एक तरफ यूरोप में अधिकारी तलाश रहे हैं तो दूसरी ओर इस्लामिक स्टेट के सदस्य भी उसे खोज रहे हैं। इस्लामिक स्टेट सलाह से इसलिए नाखुश है कि उसने अपने आत्मघाती बेल्ट से खुद को उड़ाया क्यों नहीं।
तो बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हाई अलर्ट जारी है। वहां लोगों से घरों में ही रहने और बहुत जरूरी होने पर ही निकलने को कहा गया है। देर रात मैंने बात की बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार नवाब खान से और पूछा कि सुरक्षा पर जो अभी अभी बैठक खत्म हुई है उसमें हुआ क्या।
मीटिंग जो है ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की थी और उसमें प्रधानमंत्री यहाँ के मिस्टर चार्ल्स मिशेल उन्होंने इसकी सदारत की है और उसमें और भी टॉप के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और इनके इंटीरियर मिनिस्टर। ये मीटिंग जो यहाँ के टाइम से 7 बजे शाम को ख़त्म हुई है, समझिए 11:30 बजे हमारे भारत का टाइम, तो उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2 दिन से मैक्सिमम अलर्ट जो 4 लेवल पे है वो कल भी लागू रहेगा और ब्रसेल्स में मेट्रो, स्कूल, यूनिवर्सिटीज वगैरह बंद रहेंगे। फिर उसकी जांच करेंगे और देखेंगे इसको बढ़ाया जाए या खत्म किया जाए।
ये बताइए कि बताया जा रहा है कि जो पेरिस अटैक में एक कथित तौर पर एक चरमपंथी जो शामिल थे उनकी खोज की जा रही है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, तो कितना लोगों में खौफ है या फिर
लोग डरे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक तो है उनके साथ कोई 10 लोगों को ढूंढा जा रहा है यहाँ पर और ये खास वजह है जिस वजह से इन्होंने जो है इसका अलर्ट को बाकी रखा है। कहते हैं कि जब तक वो नहीं मिलेंगे हम टेरर अलर्ट नहीं हटा सकते हैं, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी खबर नहीं मिली है कि वो पकड़े गए हैं।
नवाब साहब ये बताइए कि आप ब्रसेल्स में रहते हैं, वहाँ पर इतना तगड़ा हाई सिक्योरिटी अलर्ट है, जैसा कि आपने बताया कि मेट्रो बंद है और तमाम ऑफिसेज भी वहाँ पर बंद है, तो वहाँ पर जनजीवन कैसे चल रहा है।
मैं यहाँ 14 साल से रह रहा हूँ ब्रसेल्स में और ये जो हाल है मैंने पहली दफा यहाँ देखा है। यहाँ सड़कें जो है बिल्कुल सन्नाटा है, गाड़ियाँ वगैरह बहुत कम चल रही हैं और इन्होंने जो है शाम को रेस्टोरेंट वगैरह और बड़ी बड़ी दुकानें भी बंद कर दिया है, तो लोगों में एक तरह से खौफ और डर भी है और बहुत से लोग जो है वो घर में बैठे रहते हैं, निकलते भी नहीं है।
नवाब साहब लेकिन ये बताइए कि बेल्जियम में ऐसा हो क्यों रहा है।
ये इसलिए हो रहा है कि पिछले हफ्ते जो पेरिस में जो अटैक हुए हैं इसके बाद जो है वेस्टर्न मीडिया और फ्रेंच कुछ ऑफिशियल्स ने बेल्जियम के ऊपर बहुत जबरदस्त हमला क्रिटिसिज्म किया कि साहब ये बेल्जियम जो है ये कोई सीरियस इकदाम आतंक के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी लिखा कि देखिए 214 में यहाँ बेल्जियम में एक जूश म्यूजियम पे हमला हुआ था, चार्ली हड्डो के जो हमला हुआ था पेरिस में इस साल जनवरी में, और एक यहाँ पर अगस्त में एक ट्रेन भी जाती है पेरिस थालीस उस पर भी हमला हुआ था। तो ये सारे लोग जो थे इनका ताल्लुक यहाँ पर एक इलाका है जिसका नाम है मोलिनबिक, और उस इलाके में आपके बहुत से मोरक्कन ओरिजिन के लोग रहते हैं और वहाँ पर आपके पाकिस्तान के भी काफी लोग रहते हैं और बहुत से वहाँ पाकिस्तानियों की दुकानें भी हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि ये जो हमले हुए थे इन लोगों का ताल्लुक मोलिनबिक से था और बेल्जियम ने कोई सीरियस स्टेप नहीं लिया, इसकी वजह से जो है ये पेरिस में फिर हमले हुए हैं, तो इसका पस मंजर है। लेकिन ये भी कहना मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त नहीं है क्योंकि आपके जिस साल जनवरी में एक शहर है जिसका नाम है वेरवियस जो कि शर्क बेल्जियम में है, ईस्ट बेल्जियम में, तो वहां पर बेल्जियन पुलिस ने उनको खबर मिली कि कोई हमला होने वाला है तो उन्होंने वहां अटैक किया और दो आतंकवादियों को मारा भी। तो ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि बेल्जियंस कुछ नहीं कर रहे हैं।
ब्रसेल्स का हाल बता रहे थे वहां पर मौजूद वरिष्ठ पत्रकार नवाब खान। रुख भारत का करते हैं। यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड जैसे नियम अभी तक स्कूल और कॉलेजों में ही हुआ करते थे लेकिन अब ये नियम मंदिर परिसर में भी आने लगे हैं। हालांकि दक्षिण भारत के तमाम मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए धोती साड़ी पहनने का नियम लागू है लेकिन उत्तर भारत में ताजा मामला वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर का है। यहां आने वाले विदेशी सैलानियों के पश्चिमी शैली के कपड़ों को देखते हुए मंदिर और स्थानीय प्रशासन ने धोती या साड़ी पहनने को जरूरी करार दिया है। विदेशियों और मंदिर प्रशासन की प्रतिक्रिया के साथ बनारस से स्थानीय पत्रकार रोशन कुमार ने ये रिपोर्ट भेजी है।
भारत आने वाले विदेशी सैलानियों की पसंदीदा जगह वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने वालों को अब खास कपड़े पहनने के बाद ही मंदिर में जाने की अनुमति मिलेगी। मंदिर प्रशासन ने शनिवार को नया ड्रेस कोड लागू किया है। इसके मुताबिक पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना होगा। साड़ी पहनने की बात से उत्साहित पोलैंड की रोसा इस नए फरमान से काफी खुश नजर आई।
As a foreigner in India, I would definitely accept to wear the sari to respect the way they usually women.
स्वीडन से आए डेविड भी ड्रेस कोड लागू होने की बात सुनकर परेशान नहीं हैं। धोती पहनने को वो मंदिर के प्रति सम्मान जताने का तरीका मानते हैं।
Yeah, I think it's there's no problem with the dress code. It's just a way of paying respect and you do that in many other parts of the world as well when you want to visit religious places.
मंदिर प्रशासन का कहना है कि पश्चिमी शैली के कपड़े पहनकर मंदिर जाने की लोग अक्सर शिकायत करते थे, इसलिए ये कदम उठाया गया है। मंदिर के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी पीएन द्विवेदी हालांकि इसे ड्रेस कोड मानने से इनकार करते हैं।
ड्रेस कोड नाम की कोई चीज अभी हमारे मंदिर में लागू नहीं हुई है। ड्रेस कोड नाम वह ये कि कुछ हमारे जो श्रद्धालु आते हैं उन लोगों के विचारों पर कुछ लोग ज्यादा नहीं खास परसेंट ऐसे होंगे जो कि वयस्क विदेशी हैं चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो घुटनों को ऊपर करके कपड़ों में आते थे उनके लिए ये व्यवस्था की गई है कि वो अगर अर्थ कपड़ों में आ रहे हैं तो धोती या कुछ लपेट में ढका रहे हैं। कोई ड्रेस कोड के नाम से अभी कोई चीज इम्प्लीमेंट नहीं की गई।
कब से ये लागू हुई है?
ये लागू कल से हुआ लेकिन ड्रेस कोड के नाम से नहीं है।
मंदिर में लोगों के लिए धोती और साड़ी की खास व्यवस्था की गई है और इसके लिए काउंटर भी बनाए गए हैं। मंदिर प्रशासन का कहना है कि विदेशी लोग इन्हें अपने कपड़ों के ऊपर भी लपेट सकते हैं।
महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग धोती वो लपेट सकते हैं उसको, कोई जरूरी नहीं कि उसको किसी पैटर्न में ही पहने या अपना जो पहने हुए हैं अर्जन उसको उतार के ही पहने उसके ऊपर से लपेट सकते हैं।
ड्रेस कोड लागू करने वालों का कहना है कि इस कदम से विदेशी लोगों में भारतीय परिधानों को लेकर चाहत बढ़ेगी और सैलानियों का शुरुआती उत्साह भी इसी ओर इशारा कर रहा है। हालांकि भोले शंकर के दरबार में मुक्त रूप से अपनी मर्जी के परिधान पहनकर जाने वालों पर इसका क्या असर होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
ये थी बनारस से स्थानीय पत्रकार रोशन कुमार की रिपोर्ट। पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल में 3 महीने बंद रहने के बाद एक बार फिर से स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। हालांकि अब भी छात्रों की पूरी संख्या क्लास में नहीं पहुंच पाई। अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सीमा पर अभी भी नाकेबंदी लागू है और दोनों तरफ यानी कि भारत और नेपाल की सीमा में ट्रकों की लाइन लगी है। नेपाल के जनकपुर से ब्रज कुमार यादव की रिपोर्ट।
3 महीने बाद पहली बार स्कूल पहुंची सृष्टि तिवारी की खुशी का सीमा नहीं है। वो कहती है कि मैं इतनी खुश हूँ जिसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बंद से सारी पढ़ाई रुक गई थी। मैं काफी चिंतित थी कि अब स्कूल नहीं खुलने से मेरी आगे की पढ़ाई रुक जाएगी।
कक्षा
में पढ़ रही पिंकी भी स्कूल खुलने से काफी खुश है, पर वो भय मुक्त नहीं हो पाई है।
फीलिंग तो बहुत अच्छा आ रहा था 3 महीने के बाद पढ़ने गए। पढ़ाई तो अच्छा ही है, फिर भी स्टूडेंट कम आया था। डर लग रहा था क्योंकि सबका गार्जियन छोड़ने जा रहा है स्कूल। हर लोग भी बोले जे स्कूल और कॉलेज के आने के रास्ते में कुछ भी होगा तो हम लोग रिस्क नहीं लेंगे।
स्कूल तो खोलने दिया गया है, परंतु स्कूल बस चलाने पर अभी भी पाबंदी है। इससे अधिकांश बच्चे का अभिभावक खुद बच्चा को स्कूल पहुंचाने और लाने गए थे। वीरगंज के निवासी राम श्राफ बच्चे को मोबाइल साथ में देकर स्कूल भेजे थे ताकि कोई दिक्कतें हो तो तुरंत खबर कर सकें।
3 महीने के बाद में स्कूल खुला है तो हमको बहुत खुशी लग रहा है, मगर स्कूल जाने के बाद में भी हम लोग श्रीमान श्रीमती चिंतित बने हुए रहे। कब आंदोलन मधेश में कब चल जाएगा, कब गोली गोटा चलने लगेगा, कम से कम समय में बच्चा आ जाए करके है कि नहीं। हम लोग यहाँ तक बाल बच्चा को बोले कि तुम फोन लेके जाओ।
बच्चा स्कूल जाने से जनकपुर के धर्मेंद्र साहब भी बहुत खुश है। स्कूल बंद होने से बच्चों का भविष्य खराब होने लगा था। दिन भर बच्चा खेलने और टीवी देखने में बिताते थे।
डर का माहौल तो है, फिर भी हम लोग बच्चे को भेज रहे हैं, क्या है कि भविष्य का सवाल है उन लोगों का। थोड़ा थोड़ा खुशी भी हो रही है, अच्छी भी लग रही है। जो आज जो बच्चे लोग घर से जा रहे हैं, थोड़ा डर के माहौल में भी जो बच्चे लोग पढ़ के आते हैं तो थोड़ी बहुत खुशी भी है और थोड़ा बहुत हम लोग को दर्द भी है।
नेपाल में अभी भी आंदोलन जारी है। स्कूल संचालक का कहना है कि भय त्रास के बीच बहुत दिन स्कूल नहीं चलाया जा सकता। सरकार का कहना है कि शैक्षिक कैलेंडर में कोई बदलाव नहीं होगा।
तो एक बार नेपाल में फिर से स्कूल और कॉलेज खुल गए हैं। ये थे नेपाल के जनकपुर से ब्रज कुमार यादव। और अब कार्यक्रम में अखबारों के पन्ने पलटने का वक्त हो चला है। क्या कह रहे हैं समीर अखबार आज?
आज अखबारों में नरेंद्र मोदी ने वहाँ कुआलालंपुर में जो बात कही है चरमपंथ के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, उसकी चर्चा सारे अखबारों में प्रमुखता से दिख रही है। इंडियन एक्सप्रेस है, जनसत्ता, हिंदू, दैनिक जागरण, जितने भी अखबार मैं देख रहा हूँ, अमर उजाला, उन सारे अखबारों में इस खबर को प्रमुखता से जगह दी गई है।
दैनिक जागरण हेडलाइन लगा रहा है कि धर्म को आतंक से अलग रखें।
जी हाँ, और ये भी कह रहा है कि मलेशिया से मोदी की पाक को चेतावनी, आतंकवाद का पनाहगार न बने कोई देश। तो इसी तरह की हेडलाइंस हैं सारी जगहों में। मोदी अर्जेस नेशंस टू यूनाइट अगेंस्ट टेरर, सेज डी लिंक इट फ्रॉम रिलीजन, ये इंडियन एक्सप्रेस लिखता है। गिव नो शेल्टर टू टेररिस्ट, मोदी ये हिंदू है, धर्म से अलग करें आतंकवाद, जनसत्ता की हेडिंग है। तो लगभग सभी अखबारों ने उनके इसी बयान को प्राथमिकता दी है, प्रमुखता दी है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक खबर है नेपाल की, दैनिक जागरण में, जो 4 मधेशियों की वहाँ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अभी हमने रिपोर्ट बजाई कि स्कूल खुल गए हैं, लेकिन प्रदर्शन वहाँ अभी भी जारी हैं और पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में 4 लोगों की, पिछले शनिवार से 4 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। वेतन बढ़ोतरी के लिए करना होगा अच्छा काम, ये जनसत्ता की खबर है। अखबार लिखता है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें दी जरूर हैं, अब आयोग ने अनुशंसा की है, लेकिन अगर कर्मचारी कामकाज के मापदंड को पूरा नहीं करते हैं तो उनके वेतन में वार्षिक वृद्धि नहीं होनी चाहिए। इसी पे जनसत्ता ने कार्टून भी बनाया है मोहनलाल जी की, कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार काम न करने वालों को का वेतन नहीं बढ़ेगा। एक साहब ऑफिस में बैठे हुए हैं, फाइलों का ढेर लगा है उनकी ट्रे पे, कहते हैं दरअसल बॉस इंस्पेक्शन पर आ रहे हैं इसलिए उस ट्रे की फाइलें इस ट्रे में रख दी गई हैं।
अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, ये जो प्रशांत भूषण की खबर है वो,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शांति भूषण की अखबारों में उनकी खबर है कि उन्होंने एक बार फिर से सीधे अरविंद केजरीवाल पे, जो कि आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री है, निशाना साधा है कि आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि वो केवल अरविंद केजरीवाल की अकेले व्यक्ति की एक व्यक्ति की पार्टी है। और पहले भी उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं, लेकिन ये उनका ताज़ा हमला है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। रॉबर्ट वाड्रा जो प्रियंका गांधी के पति हैं, उनके खिलाफ कुछ जांच चल रही है और हरियाणा में हरियाणा सरकार चला रही है, सियासी कारणों से मुझे बना रहे निशाना, ये उनका बयान आया है।
वैसे ऐसे बहुत दिन बाद देखने को मिला है कि जब रॉबर्ट वाड्रा ने इस तरह का कोई बयान दिया हो।
हाँ,
आमतौर पर वो चुप ही रहते हैं।
जी हाँ, उन्होंने सीधे कहा कि मुझे निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा एक और खबर है, उसकी चर्चा काफ़ी अखबारों में, प्रदूषण को बाय बाय कहने साइकिल पर निकली दिल्ली। दिल्ली सरकार ने और भारत सरकार का स्वच्छता अभियान दोनों मिलकर के कार फ्री डे, यानी हर दो महीने पे, पिछले दो बार से तो ऐसे ही हो रहा है कि कुछ इलाकों में जाते हैं और वहां पे कुछ देर के लिए लोग साइकिल चलाते हैं, कहते हैं यहाँ पे कार नहीं चलेगी, प्रदूषण इससे बचेगा।
ये बताइए समीर कि पिछली बार आपने कब साइकिल चलाई थी?
सही बताऊं तो मुझे सच में याद नहीं है, कई साल हो गए होंगे। जी
जी, बहुत बहुत शुक्रिया समीर आत्मज मिश्रा आपका। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक आर्ट समिट के दौरान आसमान में लटकाई गई गाय की डमी को लेकर जो विवाद हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दखल दिया और कल अपने आधिकारिक अकाउंट पर लिखा कि थाना प्रभारी संबंधित पुलिस अधिकारी को हटा दिया गया है और उन्होंने खुद कलाकार से व्यक्तिगत तौर पर बात की है। इस मामले में पुलिस दो प्रतिभागियों अनीश अहलुवालिया और चिंतन उपाध्याय को पुलिस थाने में ले गई थी और गाय की डमी हटाने की शर्त पर उन्हें छोड़ा गया था। इसी घटना पर पाकिस्तान से वुसतुल्लाह खां की चिट्ठी।
प्यारे अनीश अहलुवालिया, उम्मीद है जयपुर पुलिस के हाथों लगने वाली कुटास के बाद तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त आर्टिस्ट चिंतन उपाध्याय के होश जरा ठिकाने आ गए होंगे। देखो भाई, 10-12 वर्ष ब्रिटेन में रहने, बीबीसी की नौकरी करने और फिर दुनिया भर में आवारागर्दी से तुम जैसे हलकों की आदतें फट से बिगड़ जाती हैं। मगर भैया, ये यूरोप नहीं, जहाँ कुछ भी कह लो, सुन लो, बना लो, बिगाड़ लो तो लोग बाग और सरकार में से कोई नहीं पूछेगा। ये अपना इंडिया और पाकिस्तान है, यहाँ लोग बाग अपना मुंह नहीं फेरते, सामने वाले की सुने बगैर मुंह तोड़ के रख देते हैं। आइंदा तुम या सिद्धार्थ करारवाल जैसा कोई स्कल्पचर साज कभी भी गलियों सड़कों पे मारी मारी फिरने वाली लावारिस गायों और दूसरे पशुओं की तकलीफ को धात या पत्थर की मूरत में ढालने की कोशिश मत करना, और ऐसी कोई हरकत कर भी लो तो शहर के बीचों बीच उसकी नुमाइश से खुद को रोके रखना। तुम्हारा क्या ख्याल है, ऐसी चित्रकारियों और फनकारियों से लोग बाग शर्मिंदा होकर अपने गिरेबान में मुंह डाल लेंगे और पशु पक्षियों की हालत सुधारने निकल पड़ेंगे? यार, हमारे यहाँ सगे बेटे सगी माँ को घर से निकाल देते हैं, ओल्ड होम्स में छोड़ देते हैं या अलग कुटिया में फेंक के कुछ खर्चा पानी हाथ पे धर के समझते हैं कि जन्म जली का हक अदा हो गया, और जब मर जाए तो याद करके दुनिया दिखावे के लिए टसवे भी बहा लेते हैं। हम जैसे मिडिल क्लास ये बस बागबान जैसी फिल्में देख के 5 मिनट को शक्ल ही बिसूर सकते हैं, लेकिन कोई तुम जैसा हम जैसों को शर्म दिलाने की कोशिश करे तो मुंडिया उतार के हाथ पे ना धर देंगे क्या? हमें बता रहा है कि हमें क्या करना है? और तुम चले हो जागरूकता पैदा करने के, गौ माता और दूसरे जीवों को गलियों सड़कों पे बेसहारा ना छोड़ो, कचरा ना खाने दो, प्लास्टिक बैग खाने से उनका दम घुट जाता है, वगैरह वगैरह। कुछ बातें करने की नहीं बस देखने की होती हैं, अब वो ज़माना नहीं रहा, होश में आ जाओ। शुक्र करो तुम्हें और चिंतन को जयपुर की मेहरबान पुलिस ने थोड़ी सी धक्कम पेल करके लॉकअप में बंद कर दिया और मजलूम गाय का मुजस्समा भी हटा दिया ताकि लोग बाग शर्मिंदगी छिपाने के लिए गुस्से में ना आ जाएं। वरना तो कलबर्गी अखलाक अहमद, ढाका का ब्लॉगर अजीत राय और मुल्तान में मानव अधिकारों का वकील राशिद रहमान बनते और ज़मीन पे तड़पते देर थोड़ा लगती है। अनीश, आज के माहौल में खुद को जिंदा रखना और सांस लेना ही बहुत बड़ा संघर्ष है, और तुम चले हो दूसरों को शर्म दिलाने। यार, तुमसे ज़्यादा तो हमने यहाँ पाकिस्तान में सीख लिया, जब भी बाहर निकलता हूँ सारा दर्द सारा लिबरलिज्म घर पे छोड़ के निकलता हूँ, लोगों की सिर्फ सुनता हूँ और फिर अक्षरों में ऐसे पेंट करने की कोशिश करता हूँ कि बात हो भी जाए और गिरेबान भी ना फटे। वैसे तुम अगर कराची में होते तो इतना भाषण देने की मुझे ज़रूरत भी ना होती, खुद ही सीख लेते। अब अपने दोस्तों, मुंडी और हड्डियों का ख्याल रखना, एकदम पहले जैसा मस्त। हाँ, तुम जैसे पागलों का दोस्त वुसत।
तो ये थी वुसतुल्लाह खां की चिट्ठी अनीश अहलुवालिया के नाम। और अब कार्यक्रम में उन खबरों की बात करेंगे जिन पर रहेगी आज हमारी नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान दोनों देश एक समझौते पर हस्ताक्षर कर अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाएंगे। सिंगापुर और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ भी मोदी की इस यात्रा के साथ मनाई जा रही है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी सिंगापुर में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। भारत सरकार दिल्ली में 23 नवंबर से 26 नवंबर के बीच दक्षिण एशियाई वार्षिक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2015 का आयोजन कर रही है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य देश इस संयुक्त अभ्यास में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज इसका उद्घाटन करेंगे। ये भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF की ओर से आयोजित पहला संयुक्त अभ्यास होगा। पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेस डूडा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर चीन का आधिकारिक दौरा कर रहे हैं। राष्ट्रपति डूडा 23 से 27 नवंबर के बीच चीन के आधिकारिक दौरे पर होंगे। इस दौरान वो चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के नेताओं की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। चैंपियंस टेनिस लीग का दूसरा संस्करण आज से मुंबई में शुरू हो रहा है। मुंबई दैनिक मास्टर्स और पंजाब मार्शल्स के बीच CTL2 का पहला मैच खेला जाएगा। विजेता टीम के लिए इनामी राशि 1 करोड़ रुपये रखी गई है।
और अब कार्यक्रम में बात करेंगे खेल समाचारों की।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारतीय हॉकी टीम ने शानदार और दमदार खेल दिखाते हुए कल मलेशिया में समाप्त हुए जूनियर एशिया कप फाइनल को जीत लिया। फाइनल में भारत ने परंपरागत प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को एकतरफा रूप से 6-2 से बात दी। भारत की जीत में हरमनप्रीत सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए 4 गोल किए, जबकि इमरान कुरैशी और मनप्रीत ने 1-1 गोल किया। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद याकूब और मोहम्मद दिलबर ने 1-1 गोल दागा। भारत के हरमनप्रीत सिंह ने इस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 15 गोल किए और वह टूर्नामेंट में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी रहे। उधर लंदन में खेले गए ATP वर्ल्ड टूर फाइनल्स में कल भारत के रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार रोमानिया के फ्लोरिन मर्जिया फाइनल की बाधा पार नहीं कर सके और अपनी विरोधी जोड़ी नीदरलैंड्स के जीन जूलियन रोजर और रोमानिया के होरिया टेकाउ की जोड़ी से 6-4, 6-3 से हार गए। वहीं आज से दूसरी चैंपियंस टेनिस लीग शुरू होने जा रही है। इसमें मुंबई टेनिस मास्टर्स, नागपुर ऑरेंजर्स, रायपुर रेंजर्स, हैदराबाद एसिस, पंजाब मार्शल्स और वी चेन्नई वॉरियर्स के रूप में 6 टीमें शामिल हैं। हैदराबाद की टीम में मार्टिना हिंगिस, नागपुर की टीम में येलेना यानकोविच, मुंबई की टीम में फ्लाविया पेनेटा, पंजाब की टीम में मार्कोस बगदादिस और चेन्नई की टीम में फर्नांडो वर्डास्को जैसे जाने माने खिलाड़ी शामिल हैं। बैडमिंटन के कोर्ट पर शीर्ष वरीयता हासिल स्पेन की कैरोलिना मारिन ने हांगकांग ओपन का खिताब कल अपने नाम किया। फाइनल में उन्होंने गैर वरीयता हासिल जापान की नोजोमी ओकुहारा को 1 घंटे 24 मिनट तक चले संघर्ष के बाद 21-17, 18-21, 22-20 से हराया। पुरुष एकल वर्ग का फाइनल उम्मीदों के अनुरूप मलेशिया के ली चोंगवेई ने जीता। उन्होंने चीन के तियान हाउवेई को 21-16, 21-15 से हराया। महिला युगल और मिश्रित युगल वर्ग का फाइनल चीनी खिलाड़ियों ने जीता।
खेल की खबरों के बाद इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
BBC समाचार। बेल्जियम के संघीय प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि ब्रसेल्स इलाके में चलाए गए पुलिस के व्यापक खोज अभियान के बाद 16 लोगों को ब्रसेल्स और शार्लेरोई शहर से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन गिरफ्तार लोगों में पेरिस हमले के मुख्य संदिग्ध सलाह अब्द सलाम शामिल नहीं हैं। इराक के शहर मोसुल में कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इस्लामिक स्टेट की चरमपंथियों ने सोशल मीडिया पर इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अभियान चलाने के आरोप में 12 छात्रों की हत्या कर दी है। हांगकांग में कल हुए जिला परिषदों के चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मतदान हुआ है। नेपाल में नए संविधान के निर्माण के बाद से चल रहे विरोध प्रदर्शनों में पिछले 2 दिन में कम से कम 4 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। ये सभी पुलिस के साथ हुई झड़पों में मारे गए हैं। उत्तरी म्यांमार की एक जेड खान में भूस्खलन के बाद वहाँ से कम 100 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। दर्जनों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। BBC समाचार।
तो BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे देवाशीष। विश्व भारती कार्यक्रम यानी कि भारतीय समय के मुताबिक 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।